अगले कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन पर धारा एवं उनके काव्य कृतित्व पर प्रकाश डालिए। प्रसिद्ध साहित्यकार टीएस इलियट का विचार था कि कवि का व्यक्तित्व स्वयं कवि नहीं अपितु उसकी कविता है। काव्य स्वयं कवि का परिचय देने में समर्थ है। कविवर श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उपयुक्त विचार को पूर्ण रूप से सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं। वर्तमान कवियों के मध्य श्री सक्सेना जी अपना अलग महत्व एवं पहचान बनाने में सफल सिद्ध हुए हैं। श्री सक्सेना अपने काव्यों में मानव मात्र के आम जीवन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। श्री सक्सेना यथार्थवादी कटु सत्य कहने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। अपनी अस्पष्टवादिता उनकी कविता की महान गुण परिलक्षित करती है। उनका विचार है कि काव्य का विषय मनुष्य के जीवन से उद्धृत किए जाएं। रोमांटिक कवियों की भांति स्वप्नावस्था में विचरण करने की अपेक्षा यथार्थवादी जीवन के झंझावतों एवं कठिनाइयों में ही जीवन सौंदर्य ढूंढने का प्रयत्न करो। वास्तविक जीवन में भी सच्चा सौंदर्य बोध हो सकता है। उन्होंने अपने सौंदर्य बोध काव्य में जीवन के यथार्थ को बड़े ही खुले शब्दों में प्रस्तुत किया है और लिखा है, दुनिया व्यवस्था नहीं कुतूहल खरीदती है, दुनिया आंसू पसंद करती है मगर शोक चेहरों के। उपयुक्त दोनों पंक्तियों में यथार्थवादी सौंदर्य बोध का चित्रण किया गया है जो एक आधुनिक विचार का सौंदर्य है। आज का सत्य क्या है, इनकी खोज करते हुए श्री सक्सेना ने लिखा है, अपनी गर्दन में शकरी हाड़ी फंसा कर हाथ पैर पटकी दीवारों से टकराओ, महज छटपटाते जाओ, शायद दया मिल जाए। वर्तमान समय में दया प्राप्त करने के लिए कष्ट में घिरना आवश्यक है। जो कष्ट नहीं सह सकता, जो विघ्नों में नहीं फंसा है, उसके प्रति यदि दया दिखाई जाए तो कोई सौंदर्य का बोध नहीं हो पाएगा। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यथार्थ आज के वर्तमान का सजीव चित्रण करता है, जो सावई समाज का शोषित स्वरूप है। जननायक की भांति जब वे पिछड़ा आदमी का वर्णन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि स्वयं उस व्यवस्था का एक अंग है। वे लिखते हैं, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूंगता रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। आज के जनतंत्रवाद की एक खुली व्याख्या कवि ने चंद शब्दों में इस प्रकार कर दिया, मानो गागर में सागर भर दिया। वर्तमान जनतांत्रिक व्यवस्था एवं तार तरीके में वही आदमी सर्वाधिक दुखी एवं प्रताड़ित होता है जो ईमानदारी एवं भावना से सेवा कर्म में संलिप्त है। आज का दिन हीन निर्धन गरीब बेबस मजदूर मजलूम कमजोर असहाय विकलांग व्यक्ति सर्वाधिक दंडात्मक व्यवस्था से प्रभावित होता है। समर्थ नहीं कोई दोष गुसाई की कथा पूर्णतः चरितार्थ हो रही है। जबरा मारे रोवन न दे की व्यवस्था श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बड़े ही गंभीरता से अध्ययन किया है और फोटोग्राफी के यथार्थ को शब्दों द्वारा चरितार्थ कर दिखाया है। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने प्रसिद्ध काव्य खूंटियों पर टंगे लोग में वर्तमान जनतंत्र के व्यवस्था में आम मनुष्यों की दशा को बड़े ही मार्मिक एवं व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यथार्थ का प्रस्तुतिकरण करते हुए वे संदेश देते हैं कि पलायनवाद जीवन का सात्विक भाव नहीं है। सर्वत्र अंधकार एवं राक्षसों का साम्राज्य व्याप्त है। इससे घबराकर भागने से समस्या का समाधान संभव नहीं है। वे लिखते हैं, भेड़िया गुर्राता है तुम मसाल जलाओ, भेड़िया भागेगा। बर्फ में छोड़ दो भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चित खाएंगे, भेड़िए मर चुके होंगे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में श्री सक्सेना जी ने मानव समाज को संदेश दिया है कि यदि समाज के राक्षसों को समाज से भगाना है तो ज्ञान एवं शक्ति का मशाल जलाना होगा, क्योंकि राक्षसों में ज्ञान नहीं है, वे बौद्धिक ज्ञान की ज्योति से ही पराभूत किया जा सकता है। फलतर श्री सक्सेना का यथार्थवाद जीवन के निकट ही नहीं अपितु जीवन का अंग है। नई कविता के मानकों में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समस्या समाधानवाद, मार्क्सवाद आदि के प्रभाव पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। नई कविता का नायक जनशक्ति है। वह महलों में नहीं रहता, वह राजपुत्र नहीं है, बल्कि सड़कों से उठकर सत्य के लिए संघर्ष करता है। नई कविता का नायक रोटी के लिए मरता है, कपड़ा के लिए लड़ता रहता है, मकान के लिए संघर्ष करता है, जीने के लिए युद्ध करता है। जननायक चीख चीख कर एक ही आवाज़ लगाता है, एक ही मांग करता है, सबको रोटी, सबको काम, सबको शिक्षा, सबको धाम। श्री सक्सेना जी इस सत्य को अपने काव्य भूख में प्रस्तुत करते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। उपयुक्त विवेचनाओं से सिद्ध होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना निसंदेह रूप से एक महान जन कवि हैं। वे अपने काव्यों में यथार्थ का कटु सत्य प्रस्तुत करने में जरा भी नहीं हिचकते। प्रयोगवाद, द्वंद्ववाद, यथार्थवाद, व्यंग्यवाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद, संरचनावाद आदि वैविधतापूर्ण भावनाएं प्रतीकात्मक एवं व्यवहारवादी रूप में आपकी कविताओं में प्रस्फुटित हुई हैं। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काव्य कला के विविधता के महारथी हैं। उनकी भाषा बोधगम्य एवं जनसंचारवादी है। वे एक जननायक की भांति ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे भेड़िए फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। यदि भाषा की दृष्टि उपयुक्त पंक्तियों का आकलन करें तो यह प्रतीत होता है कि श्री सक्सेना की भाषा शब्दकोश का मोहताज नहीं। उनकी भाषा तो हर गली, हर कूचे, सड़क के किनारे, मंचों से चाय पान, काफी हाउसों के दुकानों से सुबह शाम रात दिन कहीं से चुना आ सकता है, लिखा जा सकता है। फलतः वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य की भाषा आम जीवन की भाषा होनी चाहिए। उनका सुंदर उदाहरण श्री सक्सेना की काव्य में देखी जा सकती है। श्री सर्वेश्वर जी की भाषा मूलतः हिंदी खड़ी बोली है, जिसने उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगला आदि सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का दर्शन होता है। कभी कभी संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अतः श्री सक्सेना की काव्य भाषा मिश्रित है, आम जीवन में बोली जाने वाली भाषा है। श्री सक्सेना जी ने अपने काव्य में विवेचनात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। उनके शैली विशेष विशेषता का उदाहरण निम्नलिखित है। अपने इस गट्टा पारंची बबुए के पैरों में सहतीरे बांध कर चौराहे पर खड़ा कर दो, फिर चुपचाप ढोल बजाते जाओ, शायद पेट पल जाए। यह एक यथार्थवादी कटु व्यंग्यात्मक शैली है, जो वर्तमान समय में प्राय सभी नई कविता के रचनाकार अपने शैलियों में अभिन्न अंग बनाए हुए हैं। किंतु श्री सक्सेना उपयुक्त शैली में महारत हासिल किए हुए हैं। वे वास्तव में अद्वितीय हैं। यथार्थवादी कटु व्यंग्यात्मक शैली का एक और उदाहरण देखिए। शायद कल उनकी समाधियां नहीं बनेंगी, जो मरने के पूर्व कफन और फूलों का प्रबंध नहीं कर लेंगे। यथार्थ कटु सत्य व्यंग्यात्मक शैली के अतिरिक्त विवेचनात्मक, तर्कात्मक, भावनात्मक शैली का भी अपनी काव्यों में खुलकर प्रयोग किए हैं। दुख है मेरा सफेद चादर की तरह निर्मल, उसे बिछाकर सो रहता हूँ। उपयुक्त शैली सूत्रात्मक है। इसी भांति एक और सूत्रात्मक शैली का स्वरूप देखिए। दुनिया व्यवस्था नहीं, कुतूहल खरीदती है। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक करुण, भयानक, विवत्स, वीर, हास्य रस को मूलतः अपने काव्यों में प्रयोग किए हैं। आधुनिक कवियों ने दस रस के साथ साथ रुद्रारक्ष आदि का प्रयोग कर एक और रस की उत्पत्ति कर दी, जो मात्र शैली न होकर अवरस में परिवर्तित हो चुकी है, जिसे संदेह रूप से व्यंग्य रस कहा जा सकता है। फलत अब 11 रुद्र की भांति अब 11 रस हो चुके हैं, जिसमें व्यंग्य रस की एक अलग पहचान बन गई है। अलंकार की दृष्टि से श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अन्य आधुनिक कवियों की भांति अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है तथा छंद, मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। सक्सेना जी की अगली कविता का शीर्षक है भेड़िया दो। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, अब तुम मशाल उठा, भेड़िये के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, जब भेड़िये भागेंगे फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िये आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीत खाएंगे, भेड़िये मर चुके होंगे और तुम। कविता की व्याख्या एवं विशेषता इस प्रकार है। प्रस्तुत मुक्त भेड़िया में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना वर्तमान समाज में फैले ऐसे चरित्र पर कुठाराघात करते हैं जो समाज को भेड़िये की भांति लूट रहे हैं। भेड़िया ऐसे लोगों का चरित्र प्रस्तुत करता है जो समाज को अपने स्वार्थ का साधन बनाने में संलग्न है। कभी आम आदमियों को संदेश देता है कि अपने हाथों में क्रांति का मशाल उठा लो और भेड़िये को घेर लो। जब करोड़ों जन एक साथ भेड़िये को घेर लेंगे तो निसंदेह ये भेड़िया भागेंगे। इनका पीछा जंगल तक करो और इन सबको बाहर निकालकर इनके भावनाओं पर तुषारापात कर दो, जिससे आपस में खुद लड़ मरेंगे। जब इनका नाश हो जाएगा तो तुम शांति रूप से समाज में रहने लगोगे। सक्सेना जी की अगली कविता का शीर्षक है भेड़िया तीन। भेड़िये फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िये का आना जरूरी है, तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा, इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। इन पंक्तियों की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भेड़िया समाज हर देशकाल परिस्थिति और वातावरण में रहा है। कवि का विचार है कि ये भेड़िया कहीं और से नहीं अपितु तुम्हारे अपने ही मध्य से कोई बन जाता है और वह अपनी भावनाओं को प्रचारित प्रसारित कर समाज के अनेक लोगों को अपनी कल बल छल से अनुयायी बनाकर भेड़ियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी विकास करता है तथा समाज क्षत विक्षत नष्ट करने का प्रयत्न करता है। तुम्हें इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सदैव मशाल जलाए रखना होगा, न जाने कब कोई नया भेड़िया जन्म ले ले। इतिहास इस बात की साक्षी रही है कि जब समाज में कोई भेड़िए जैसा लुटेगा पैदा होता है तो मशाल जलाने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं और उन्हें वह अपने साहस क्षमता बल उत्साह शौर्य से मार भगाता है। ऐसे ही महान इतिहासों की रचना हुई है और मानव की सफलता का इतिहास रचा गया है और भेड़िए हर युग एवं काल में परास्त हुए हैं। यहीं पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता एवं उनकी व्याख्या समाप्त हो गई।